समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
नमस्कार श्रोताओं, रविवार को अक्सर हफ्ते का सबसे आरामदायक और खुशहाल दिन माना जाता है। ये दिन तनाव मुक्त होने और जिंदगी की छोटी खुशियों का मजा लेने का वक्त है। चाहे आप अपना रविवार घर पर आराम करते हुए बिताएं, या सैर पर जाएं, या फिर अपनों के साथ समय बिताएं, ये दिन आपको फिर से एनर्जाइज बनाने और आने वाले हफ्ते के लिए तैयार करने का दिन है। तो फिलहाल आपको ताजा तरीन खबरों से अवगत कराने, खेल गतिविधियों के बारे में बताने के लिए और साथ ही कुछ खास हस्तियों की उपलब्धियों की संक्षिप्त जानकारी देने के लिए मैं आ गई हूं सरफिरोजी परिक्रमा के नए अंक के साथ। और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी प्रशांत कुमार सिन्हा। प्रशांत, आपको भी नमस्कार।
हेलो एंड गुड आफ्टरनून लिसनर्स, यू आर ट्यून्ड टू परिक्रमा ऑन 100.1 FM। आई एम प्रशांत कुमार सिन्हा एंड विथ मी टुडे इज माय को होस्ट सरफिरोजी, एंड फॉर यू वी हैव अ सिलेक्शन ऑफ न्यूज, आर डिस्कशन सेगमेंट डेटलाइन इंडिया, रिपोर्ट्स, कैप्सूल्स, ट्रिब्यूट्स एंड मच मोर। ऑल दीज ओवर द नेक्स्ट 30 मिनट्स। वी बिगिन विद द न्यूज हेडलाइंस फर्स्ट। The headlines. Union Railway Minister Ashwini Vaishnav flags off Bhavnagar-Ayodhya Cant weekly train from Bhavnagar station in Gujarat. Also inaugurates Rewa, Pune and Jabalpur-Raipur trains virtually.
उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में 15 श्रद्धालुओं से भरी एक कार के सरयू नहर में गिरने से 11 लोगों की मृत्यु।
IMD forecasts extremely heavy rainfall over Arunachal Pradesh, Assam, Meghalaya, Sikkim and the sub-Himalayan West Bengal today.
टेबल टेनिस में शीर्ष वरीयता प्राप्त मानु शाह और दिया चितले की भारतीय जोड़ी ने ब्राजील में WTT स्टार कंटेंडर प्रतियोगिता के मिक्स डबल्स फाइनल में प्रवेश किया। आज रात उनका सामना जापान के सातोशी आइदा और होनोका हाशिमोतो से होगा।
एंड इन क्रिकेट, इंग्लैंड रिज्यूम सेकंड इनिंग्स प्ले अगेंस्ट इंडिया ऑन डे 4 ऑफ द फाइनल टेस्ट ऑफ द एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी एट द ओवल। And now, listeners, time for our segment Dateline India, in which we take a look at the developments taking place at the national or global level. Today we will talk about Prime Minister's appeal for Swadeshi products and Ayurved Ahar. Prime Minister Narendra Modi has made a strong appeal for reviving the spirit of Swadeshi, urging Indians to prioritize locally made products and stand united in the face of growing global economic uncertainty. Speaking at a public meeting in his Varanasi Lok Sabha constituency, Prime Minister Modi warned that the world economy is entering a phase of instability and unpredictability. In such times, countries are focusing solely on their interests. India, too, is on the path to becoming the world's third largest economy and must remain alert to its economic priorities. Therefore, India must remain vigilant about its economic interests. The Prime Minister said that if we want India to become the third largest economy, every political party and every leader, keeping aside their hesitations, must work in the nation's interest and awaken the spirit of Swadeshi among people.
प्रधानमंत्री ने कहा कि नागरिकों की भी कुछ जिम्मेदारियां होती हैं। उन्होंने सभी से स्वदेशी का संकल्प लेने का आग्रह किया। उन्होंने स्वदेशी को किसी भी भारतीय के पसीने और मेहनत से बनी चीज के रूप में परिभाषित किया और देशवासियों से वोकल फॉर लोकल के मंत्र को अपनाने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने नागरिकों से मेक इन इंडिया उत्पादों को बढ़ावा देने का संकल्प लेने का आग्रह किया है। श्री मोदी ने कहा कि हमारे घरों में आने वाली हर नई वस्तु स्वदेशी होनी चाहिए और ये जिम्मेदारी हर भारतीय को निभानी है।
और जो चीज भारत के लोगों के कौशल्य से बनी है, हमारे लिए वह स्वदेशी है। हमें वोकल फॉर लोकल मंत्र को अपनाना होगा। हम संकल्प लें कि हम मेक इन इंडिया प्रोडक्ट्स को ही बढ़ावा देंगे। हमारे घर में जो भी नया सामान आएगा वो स्वदेशी ही होगा।
और प्रधानमंत्री ने प्रत्येक व्यापारी और दुकानदार से केवल स्वदेशी उत्पाद बेचने का संकल्प लेने की अपील की और कहा कि यही राष्ट्र की सच्ची सेवा होगी। उन्होंने लोगों से आगामी त्योहारों के मौसम में स्वदेशी उत्पादों का उपयोग करने का आग्रह किया और कहा कि यही महात्मा गांधी को सच्ची श्रद्धांजलि है।
And now our second dateline is Ayurved Ahar. The Food Safety and Standards Authority of India, FSSAI, in consultation with the Ministry of Ayush, has released a definitive list of Ayurvedic food preparations under the category of Ayurved Ahar in New Delhi yesterday. This significant step brings India's time-honored food wisdom into the mainstream following the introduction of the Food Safety and Standards Regulations in 2022. Listeners, these regulations recognize foods based on recipes, ingredients and processes from authoritative Ayurvedic texts, and the new list brings unprecedented clarity and confidence to consumers and businesses alike.
और श्रोताओं, हम सभी जानते हैं कि आयुर्वेद आहार भारत की खाद्य संस्कृति की समृद्धि का प्रतीक है। इसकी जड़ें आयुर्वेद में हैं और ये दुनिया की सबसे पुरानी और समग्र स्वास्थ्य प्रणालियों में से एक है। ये खाद्य उत्पाद प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठाकर तैयार किए जाते हैं और ये पोषण, संतुलन और परम्परा का मिश्रण करके समग्र स्वास्थ्य को बढ़ावा देते हैं। नवम्बर 2023 में वर्ल्ड फूड इंडिया के उद्घाटन समारोह में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा था कि भारत की खाद्य संस्कृति हजारों वर्षों की यात्रा का परिणाम है। हमारे पूर्वजों ने आयुर्वेद को आम लोगों की भोजन शैली से जोड़ा था और जिस प्रकार भारत की पहल पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने की शुरुआत हुई, योग दिवस ने योग को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाया, उसी प्रकार अब अंतर्राष्ट्रीय खाद्य संस्कृति के विकास से बाजरा भी दुनिया के कोने कोने तक पहुंचेगा। आयुष और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री श्री प्रताप राव जाधव ने नागरिकों से आयुर्वेद आहार को अपने दैनिक जीवन में शामिल करने का आग्रह किया ताकि इससे दीर्घकालिक स्वास्थ्य लाभों का अनुभव किया जा सके। उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत के पारंपरिक ज्ञान पर आधारित ये समय परीक्षित आहार पद्धतियां न केवल शरीर को पोषण देती हैं बल्कि रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी मजबूत करती हैं, पाचन में सहायक होती हैं और समग्र स्वास्थ्य को बढ़ावा देती हैं। आज की भागदौड़ भरी जीवन शैली में आयुर्वेद आहार को अपनाना स्वास्थ्य सेवा और एक संतुलित टिकाऊ जीवन शैली की दिशा में एक सार्थक कदम है।
Now let us discuss on Ayurved Ahar or Ayurvedic food. Listeners, Ayurvedic food emphasizes a holistic approach to diet, focusing on the individual's unique constitution or prakriti and the impact of food on the body and mind. It stresses the importance of consuming foods that are both nourishing and healing, considering factors like taste, digestion and the seasons. Dietary recommendations vary based on the season. For example, cooling foods are emphasized in the summer, while warming foods are encouraged in the winter. Ayurveda also promotes mindful eating practices, such as eating in a calm environment, chewing food thoroughly and paying attention to hunger and fullness cues.
जी बिल्कुल प्रशांत, और अपने श्रोताओं को बताते चलें कि भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा जारी ये सूची सीधे शास्त्रीय आयुर्वेदिक ग्रंथों से ली गई है, जो इन खाद्य पदार्थों की प्रामाणिकता और पारंपरिक आधार को सुनिश्चित करती है। सूची जारी करते हुए आयुष मंत्रालय के राज्य मंत्री और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री के राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव ने नागरिकों से आयुर्वेद आहार को अपने दैनिक जीवन में शामिल करने का आग्रह किया।
This initiative aims to assist food business operators by providing a clear and credible reference for the manufacture of Ayurved Ahar products. This initiative marks a pivotal moment in enhancing regulatory clarity for industry stakeholders while promoting the widespread adoption of Ayurved-based nutrition for better public health outcomes.
और श्रोताओं, परिक्रमा में अब समय है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से जानने का कि उनके पास क्या खास जानकारी है।
Listeners, as floral offerings in temples find their way to landfills like the rest of the garbage from households, offices, hotels and industries, members of the Rotary Club Wiser Couples, RCVC, decided to convert them into a valuable garden resource through their initiative. A report.
On a daily basis, most devotees offer fresh flowers, fruits and coconuts to deities of the shrine to perform puja. How about collecting and converting them into organic manure instead of allowing them to pile up in the corners of the temple premises that eventually enter landfills? It is the same concept that nudged the members of Rotary Club Vaisa couples to work on a sustainable project known as Swachh Devalayam. Even as organizations, institutions and departments have been taking up plantation and cleanliness drives as part of the Swachh Bharat mission, the members of club explored ways to convert temple waste into organic manure.
This is Dr. Shravani Chituri, Secretary, Rotary Club Vaisak Couples. Under the name of Bhakti, all of us take a lot of offerings to the temple in the form of flowers, fruits, leaves, coconuts, etc. After offering to the god and after using them, this waste is collected and either dumped in the nearby garbage bins or into the water bodies that would accumulate a lot of pollution. So in order to curb pollution from the temple waste, we have launched Swachh Devalayam project in two temples.
After deriving a desirable outcome from its first edition of the endeavor implemented at Panduranga Swami Temple, the club members took the project forward to Kali Temple located on RK Beach Road of the coastal city Vizag. Temple waste can effectively be recycled to nutrient-rich organic fertilizers through composting. The process not just minimizes landfill waste to an extent, but also provides a valuable resource for healthier gardening. Henry for Parikrama, Akashvani, Vishakhapatnam.
बिल्कुल प्रशांत, ये प्रदूषण को रोकने और स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए बेहतरीन पहल है। और अब विशाखापत्तनम से आपको लेकर चल रहे हैं नागपुर, जहां केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की पहल पर भारत में निर्मित अत्याधुनिक मेडिकल मशीनरी के माध्यम से एक डायग्नोस्टिक सेंटर की शुरुआत की गई है। सुनते हैं हमारी संवाददाता की ये रिपोर्ट।
देवेंद्र फडणवीस के हाथों हाल ही में नागपुर के लश्करीबाग क्षेत्र में भानुताई गडकरी डायग्नोस्टिक सेंटर का उद्घाटन किया गया। यह केंद्र गरीब और जरूरतमंद मरीजों को अत्यंत शुल्क में आधुनिक जांच और उपचार सुविधा उपलब्ध कराएगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में संवेदनशीलता और सेवा दोनों को प्राथमिकता दी है। इस अवसर पर नितिन गडकरी ने बताया कि
मैं घोषित करना चाहता हूं कि ये 6000 वर्ग फुट के जमीन में पूरी तरह ये पहला हमारा इमारत है जो मेड इन इंडिया मशीन है। 1.5 टेस्ला हाई एंड इमेजिंग 16 चैनल म्यूजिक टेक्निक द्वारा सिमलेस आरएफ पॉइंट इंटीग्रेशन, जिससे स्कैनिंग तेज होती है, इमेज क्वालिटी में कोई समझौता नहीं होता है। ये वर्ल्ड स्टैंडर्ड की मशीन है और मुझे खुशी है कि हमारे गरीबों के लिए ये MRI केवल 1200 रुपए में मिलेगा।
यह केंद्र भारत में निर्मित MRI मशीन सहित अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विश्वास जताया कि यह केंद्र स्वास्थ्य सेवाओं में मील का पत्थर साबित होगा। आकाशवाणी नागपुर से परिक्रमा के लिए धनंजय वानखेड़े के साथ हेमांगी कुलकर्णी।
And now, Sir Firozi, moving on to Kohima, where in a hands-on learning initiative, students of the PM Shri Government High School Vokha Village have turned a kitchen garden into a vibrant space for learning and growth. Launched earlier this year, the student-run garden involves classes 6th to class 10th, and students grow vegetables while learning teamwork, responsibility and sustainability. Let's hear more on this from our Kohima correspondent.
Divided into red, blue and green houses, students manage plots under teachers' guidance. Supported by government initiatives, the project promotes experiential learning and nurtures environmental awareness. Teachers also participate actively, fostering a strong sense of shared responsibility within the school community. The garden yields seasonal crops like corn, pumpkin, yam and others. The vegetables grown also supplement the school's midday meal program. A new herbal garden jointly managed by all houses adds further value. Chitanbini A. Odio, students of PM Sri Government High School, Vokha Village, shares more on the initiative.
My name is Chitanbini A. Odio from Standard 10, PM Sri Government High School, Vokha Village, Nagaland. Today, I am excited to share my experience about my school green garden. We have gained knowledge about plants, nutrition and gardening practices, and we have built stronger bonds with our schoolmates and teachers.
Seeds from harvested crops are carefully preserved for the next planting cycle, reinforcing a model of self-reliance and environmental stewardship. In June 2025, School Management and Development Committee members visited the garden, awarding prizes to outstanding student contributors. What began as a simple garden has now grown into a school tradition, cultivating life skills and environmental awareness. For Parikrama, Asunyu Kohima.
तो प्रशांत अब खेल के मैदान में चलते हैं और वहां की भी हलचल ले लेते हैं।
Yes, Sarfarozi, listeners in cricket hosts England were 106 for 3 in their second innings against India on the crucial day 4 of the 5th and final test of the Anderson Tendulkar Trophy at the Oval in London when reports last came in. The hosts resumed their play at the overnight score of 50 for 1, needing 324 more runs to chase down a steep target of 374 set by India in their second innings. All eyes are on the fourth day's play, which could decide the fate of the tournament, with England leading the series 2-1. This match is India's last chance to level their series and avoid a defeat on English soil.
और क्रिकेट के बाद अब बात टेबल टेनिस की. ब्राजील के फोज डू इग्वाकू में चल रहे विश्व टेबल टेनिस स्टार कंटेंडर टूर्नामेंट में भारत का शानदार प्रदर्शन जारी है. मानुष शाह और दिया चिताली की जोड़ी आज मिक्स डबल्स का फाइनल खेलेगी. मैच भारतीय समय अनुसार रात 9 बजे शुरू होगा. फाइनल में भारतीय जोड़ी का सामना जापान के सातोशी आयदा और हनोका हाशिमोतो से होगा. इस बीच पुरुष डबल्स के फाइनल में कल भारत की शीर्ष वरीयता प्राप्त जोड़ी मानव ठक्कर और मानुष शाह जर्मनी के बेनेडिक्ट डूडा और डोंग क्यू से कड़े मुकाबले में 2-3 से हारकर उपविजेता रही. इस हार के बावजूद ये एक ऐतिहासिक उपलब्धि थी, क्योंकि पहली बार दो भारतीय डबल्स टीमें विश्व टेबल टेनिस स्टार कंटेंडर टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंची हैं.
And now some news from defence. As part of the Indian Navy's ongoing operational deployment to Southeast Asia, Indian naval ships INS Delhi, INS Shakti and INS Kiltan of the Eastern Fleet, commanded by Rear Admiral Sushil Menon, Flag Officer commanding Eastern Fleet, arrived at Manila, Philippines. The ships were accorded a warm welcome by the personnel of the Philippine Navy, underscoring the strong and growing maritime ties between India and the Philippines. Listeners, the visit is a testimony to the Indian Navy's commitment to strengthening partnerships in the Indo-Pacific. On arrival, Rear Admiral Sushil Menon interacted with local media representatives, highlighting the shared commitment of both nations towards maintaining stability and maritime security. The visit reaffirms the strategic importance of the event and the high-level engagement with the Philippine Navy, representing India's maritime outreach in the region.
श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम परिक्रमा सरफिरोजी और प्रशांत कुमार सिन्हा के साथ. अब हम याद करेंगे महान स्वतंत्रता सेनानियों को और बात करेंगे उन हस्तियों की जिनकी आज पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिवस है.
3rd of August इज द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ द फ्रीडम फाइटर नाना पाटिल, पॉपुलरली नोन एज क्रांति सिंह.
नाना पाटिल वॉज बोर्न इन 1900 एट सांगली, महाराष्ट्र. He was a founding member of the Hindustan Republican Association. In 1919, Patil began his social work with Prarthna Samaj. He spent 10 years working for the Prarthna Samaj and the Satya Shodhak Samaj for the development of depressed classes. He was against the caste system, and throughout his life, he fought for the rights of the poor and the farmers.
Patil was imprisoned many times during the struggle with the British Raj. He went underground for 44 months during the Quit India movement in 1942. Nana Patil had been a founder of the revolutionary Prati Sarkar, formed in Sangli district of Maharashtra during the Quit India movement. Patil also fought along with Acharya Atre for the creation of the state of Maharashtra. The noble soul breathes his last on 6th December 1976. AIR News salutes the great nationalist.
We remember freedom fighter Devdas Gandhi on his death anniversary. He was the youngest son of Mahatma Gandhi and Kasturba Gandhi. Devdas Gandhi was born on 22nd May 1900 at Durban, South Africa. He did not receive any conventional education. but he was well educated in the real sense. He had inherited Gandhiji's saintliness, judgment, the capacity to go into details, and the desire to be practical.
Devdas Gandhi took part in the non-cooperation movement, civil disobedient movement, and Quit India movement, and was imprisoned 3 times. When Mahatma Gandhi started seeking help for the establishment of Jamia Millia Islamia, Devdas also came forward on the call of Gandhiji. He started teaching Hindi there and also cotton spinning. He made journalism his major activity.
In 1920-21, he started working in the newspaper Independent, published from Prayagraj. He also helped his father in bringing out Young India and Navajivan. Devdas Gandhi died on 3rd August 1957 in Mumbai. AIR News pays tribute to the nationalist leader Devdas Gandhi.
We also remember the freedom fighter Munawwar Khan. He was a resident of Hisar, Haryana. Munawwar worked as a sepoy in the 7th Haryana Light Infantry of British Indian Army. He took part in fighting against the British during the First War of Independence in 1857.
He played an active part in organizing fighting at Sirsa. Munawwar was caught by the British troops on charge of mutiny against the British rule. He was convicted and sentenced to death on 3rd August 1857. We salute the brave martyr Munawwar Khan.
We also pay tribute to Raja Pratap Singh. He was the Raja of Kullu who participated in the First War of Independence in 1857. Raja Pratap Singh captured British strongholds and declared his kingdom to be free from the British dominance. However, later he was captured by the British forces and executed on 3rd of August 1857. We salute the brave martyr Raja Mahendra Pratap.
आज ही पुण्यतिथि है फिल्म कलाकार मिथिलेश चतुर्वेदी जी की भी. इन्होंने कई टीवी धारावाहिकों में अभिनय किया. कोई मिल गया, गदर, बंटी और बबली जैसी कई फिल्मों में अपने अभिनय की छाप छोड़ने वाले मिथिलेश चतुर्वेदी को लोग फिल्म मोहल्ला 80 में प्रिंसिपल की भूमिका के लिए भी जानते हैं. साल 2016 में गुलजार के नाटक द कॉमेडी ऑफ एरर्स में इन्होंने विलियम शेक्सपियर की यादगार भूमिका निभाई थी. सन 1997 में इन्होंने पहली बार फिल्म भाई भाई में काम किया. ज्यादातर फिल्मों में ये साइड रोल में नजर आए. सत्या, ताल, गदर एक प्रेम कथा, अशोका द ग्रेट, रोट, बंटी और बबली, कृष, गांधी माय फादर, माय फ्रेंड प्रिंटो जैसी कई फिल्मों में इन्होंने काम किया. और इस साक्षात्कार में वो अपने निभाए किरदारों का अनुभव साझा कर रहे हैं.
वो रोल ज्यादा याद रहते हैं जिसमें उसे गालियां पर. तो ऐसा ही मैंने एक जिसमें कि मैंने कंप्यूटर टीचर का रोल किया था और उसमें ऋतिक रोशन को बहुत जबरदस्त तरीके से झाड़ा था. तो भाई वो तो डायरेक्टर ने कहा था, स्क्रिप्ट वैसी थी, तो कर दिया. लेकिन जब वो फिल्म रिलीज हुई तो जो ऋतिक रोशन के चाहने वाले थे उन्होंने मुझे इस कदर जलील किया, इसकी कोई याद नहीं है.
आज जयंती है प्रसिद्ध शायर और गीतकार शकील बदायूनी जी की. तहजीब के शहर लखनऊ ने फिल्म जगत को कई हस्तियां दी हैं, जिनमें से एक गीतकार शकील बदायूनी भी शामिल हैं. इनकी शायरी रूमानी और दिल के करीब होती थी. शकील कहा करते थे, मैं शकील दिल का हूं तर्जुमन, कह मोहब्बतों का हूं राजदान, मुझे फक्र है मेरी शायरी मेरी जिंदगी से जुदा नहीं. इन्हें अपने गीतों के लिए लगातार 3 बार फिल्म फेयर पुरस्कार से नवाजा गया. पहला फिल्म फेयर पुरस्कार इन्हें प्राप्त हुआ साल 1960 में आई 14वीं का चांद फिल्म के लिए.
सुहानी रात ढल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे, जहाँ की रुत बदल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे.
Listeners, he moved to Bombay in 1944 to write songs for films, and he met film producer A.K. Kardar and music composer Naushad, who chose him for the film Dard of 1947. The song of Dard proved to be very successful, especially the song Afsana Likh Rahi Hoon. And together he and Naushad Sahab became one of the most sought-after composer-lyricist duos in the industry. And among the scores they churned out together are those that include Didar of 1951, Baiju Bawra of 1952, Mother India of 1957, and Mughal-e-Azam of 1960. Their films lists go on, Dulari of 1949, Shabab, Ganga Jamna, and Mere Mehboob.
Mere Mehboob, tujhe meri mohabbat ki qasam, phir mujhe nargisi aankhon ka sahara de de. Mera khoya hua rangeen nazara.
Sir Firozi, although Shakil Badiuni worked most extensively with Naushad, he also collaborated with Ravi and Hemant Kumar. His notable films with Ravi include Chaudhari Ka Chand, while Sahab Bibi Aur Ghulam of 1962 is his biggest hit with Hemant Kumar. The title song from Chaudhari Ka Chand, rendered by Muhammad Rafi, won the Filmfare Award for Best Lyricist in 1961, and his award list goes on for the song Husn Wale Tera Jawab Nahi in the film Gharana of 1961, and he got the Best Lyricist Award for the song Kahin Deep Jale in the film 20 Saal Baad of 1962.
Husn wale tera jawab nahi, koi tujhsa nahi hazaron mein. Husn wale tera jawab nahi.
आज पुण्यतिथि है भारत के प्रसिद्ध आध्यात्मिक चिंतक और वेदांत दर्शन के विश्व प्रसिद्ध विद्वान स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती जी की. इनका मूल नाम बालकृष्ण मेनन था. इन्होंने गीता ज्ञान यज्ञ की शुरुआत की और वर्ष 1953 में चिन्मय मिशन की स्थापना की. उपनिषद, गीता और आदि शंकराचार्य के 35 से अधिक ग्रंथों पर इन्होंने व्याख्याएं लिखी.
And listeners, today is the birth anniversary of renowned music composer Jaydev. His work includes Hum Dono of 1961, Reshma Aur Shera of 1971, Prem Parvat of 1973, Gharonda of 1977, and the film Gaman of 1978. He won the National Film Award for Best Music Direction 3 times for Reshma Aur Shera, Gaman, and Ankahi. Listeners, Jaydev Sahab was the first music director to bag 3 national awards.
आपके आती रही रात भर चश्मे नम मुस्कुराती रही रात भर आपकी याद आती.
Listeners, his big break as a full-fledged music director came with Chetan Anand's film Joru Ka Bhai, followed by Chetan Anand's next film Anjali, and both of these films were very popular. Let's listen in.
अभी अभी तो आई हो अभी अभी तो अभी अभी तो आई हो बहार बन के छाई हो हवा जरा महक तो ले नजर जरा बहक तो ले ये शाम.
आज जन्मदिन है महान शास्त्रीय गायक पंडित छन्नूलाल मिश्र जी का. इन्हें हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के महानतम कलाकारों में से एक माना जाता है. इन्होंने कहिल, ददरा, ठुमरी, चैती, कजरी, होरी और भजन में अद्भुत संगीत प्रस्तुत किया. इन्हें पद्मभूषण, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, नौशाद पुरस्कार, स्मिथसोनियन अवार्ड, बिहार संगीत शिरोमणि पुरस्कार, डॉ राधाकृष्ण पुरस्कार, तानसेन अवार्ड, भातखंडे पुरस्कार और काशी विश्व सम्मान जैसे सम्मानों से सम्मानित किया गया। आइए सुनते हैं इनकी एक प्रस्तुति। श्रोताओं, इस खूबसूरत सी प्रस्तुति के साथ इजाजत दीजिए सरफिरोजी और प्रशांत कुमार सिन्हा को, परिक्रमा कार्यक्रम यहीं समाप्त करने की। नमस्कार।
नमस्कार।